नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,034 करोड़ रुपए की लागत से 5,023 MBBS सीटें और PG की 5,000 सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया। CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि घोषित की। परीक्षा अगले साल 17 फरवरी से शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा, सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करके लद्दाख के लोगों के आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध। और क्रिकेट में भारत ने एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। श्री मोदी ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रदर्शनी में राज्य की विविध शिल्पकलाओं, आधुनिक उद्योगों, सशक्त MSME और उभरते उद्यमियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुष आदि प्रमुख क्षेत्र भी शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये व्यापार प्रदर्शनी 29 सितम्बर तक चलेगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
बाद में प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा करेंगे और 1,22,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे बांसवाड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ 700 मेगावाट क्षमता के 4 स्वदेशी दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जिससे प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह देश में सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। श्री मोदी आज हरित ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इस वैश्विक खाद्य आयोजन में 21 से अधिक देशों, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 10 केंद्रीय मंत्रालयों की भागीदारी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हितधारकों का सबसे बड़ा सम्मेलन है।
प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण आधारित सहायता प्रदान की जाएगी। इस आयोजन के दौरान CEO गोलमेज सम्मेलन, तकनीकी सत्र, प्रदर्शनियों सहित कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष 14 पवेलियन में इस वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,00,000 आगंतुकों के आने की उम्मीद है। रईसुद्दीन रिहान के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत अगले 3 वर्ष में मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में 5,023 MBBS सीटें और PG की 5,000 सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी।
5,000 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का अप्रूवल कैबिनेट में मिला है और इसके लिए आउटले होगा 15,035 करोड़ रुपीस। ओवरऑल बेटर हॉस्पिटल्स, अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उनमें नए डिपार्टमेंट्स खुलना, नए डिसिप्लिन्स लाना, बेटर इक्विपमेंट लाना, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाना और AI का भी बहुत उपयोग किया जाएगा इन इम्प्रूविंग द मेडिकल एजुकेशन।
इस योजना की लागत 15,034 करोड़ रुपए होगी। इस पहल से स्नातक चिकित्सा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटों के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। इस कदम से छात्रों को भारत में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के अधिक अवसर मिलेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। वे 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल मंडल चौहान को 28 सितंबर 2022 को CDS नियुक्त किया गया था। अगली पीढ़ी के GST सुधार भारत के अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। GST सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर को कम करके ये सुधार नागरिकों को काफी राहत पहुंचा रहे हैं।
नए GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कॉमन अवशेष शोधन संयंत्र पर लगाने वाले GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इन संयंत्र पर टैक्स कम होने से उद्योगों को केंद्रीकृत कचरा प्रबंधन अपनाने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और औद्योगिक क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। कम दरों से कचरे की छटाई, संयंत्र संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में हरित रोजगार भी पैदा होंगे। इसी तरह बायोडिग्रेडेबल बैग पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ये बैग सस्ते होंगे और उपभोक्ता व दुकानदार प्लास्टिक बैग की बजाय इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित होंगे और प्लास्टिक प्रदूषण घटेगा। सरकार का मानना है कि कम GST से अनुसाधन व विकास, बायोपॉलीमर, स्टार्च आधारित और खाद सामग्रियों के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को राहत देने और सोलर पंप सस्ता करने के लिए GST परिषद ने सौर और पवन उपकरणों पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। अब सोलर कुकर, सोलर पावर जनरेटर, पवन चक्की और वायु जनरेटर पर भी सिर्फ 5% GST लगेगा। शिवांग, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अगले साल होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि की घोषणा कर दी है। बोर्ड के अनुसार अगले साल 17 फरवरी से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। CBSE ने कहा है कि ये तिथियां अस्थायी हैं और स्कूलों द्वारा उम्मीदवारों की अंतिम सूची जमा करने के बाद अंतिम तिथियां जारी की जाएंगी। भारत में 204 विषयों और विदेशों में 26 देशों में लगभग 45 लाख छात्रों के इन परीक्षाओं में शामिल होने की उम्मीद है। पहली बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में दो बार आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार सोनम वांगचुक की छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग पर ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि इस संवाद प्रक्रिया से अभूतपूर्व परिणाम आए हैं। लद्दाख के अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% किया गया है। परिषदों में एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षण भी प्रदान किया है। इसके अलावा भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और इस प्रक्रिया के साथ 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक अगले महीने की 6 तारीख को निर्धारित की गई है और साथ ही आज और कल लद्दाख के नेताओं के साथ बैठकें भी निर्धारित हैं। लेह में कल हुई हिंसक झड़पों के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है। रात्रि के दौरान किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। लेह के उपायुक्त डोमिल सिंह डोंक ने SSP लेह के साथ देर रात मीडिया को स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने और BNSS 2023 के अंतर्गत प्रतिबंध आदेश का पालन करने की अपील की। राजस्थान नवम्बर में एंड्योरेंस साइकिलिंग इवेंट टूर द थार की मेजबानी करेगा। 23 नवंबर को बीकानेर जिले के नौरंग देसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दैनिक जीवन में साइकिलिंग को अपनाने पर जोर दिया, क्योंकि ये शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और प्रदूषण का समाधान भी देता है।
साइकिलिंग स्पोर्ट्स है, साइकिलिंग साइकोलॉजी है, साइकिलिंग फिटनेस भी है और साइकिलिंग हेल्थ भी है, और इसलिए साइकिलिंग आत्मनिर्भरता का संदेश भी है। साइकिलिंग करेंगे ना आपको तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तो साइकिलिंग को फैशन और पैशन के रूप में अपनाना होगा।
सेवा सुशासन अर्थात जनसेवा सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कैसे मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नवाचारों के माध्यम से भारत के रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है। एक रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स पहल अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था। यह अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षा जगत, उद्योगों, स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत नव प्रवर्तकों को शामिल करके रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करता है। महाबलीपुरम में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन और आईडेक्स का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।
गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर डिफेंस सेक्टर। आवर टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप हैज बीन रिलीज्ड टू हेल्प द इंडस्ट्री इन प्लानिंग एंड इनिशिएटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड प्रोडक्शन अरेंजमेंट।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षा जगत को शामिल करके आईडेक्स ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायता के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया है। अपने प्रभाव को मजबूत करते हुए सशस्त्र बलों ने आईडेक्स समर्थित स्टार्टअप्स और एमएसएमई से 2400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 43 वस्तुएं खरीदी हैं, जो रक्षा तैयारियों के लिए स्वदेशी नवाचार में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इस भागीदारी ने भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन समाधानों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने में मदद की। आईडेक्स ने पहले ही सकारात्मक परिणाम देने शुरू कर दिए, जिससे रक्षा प्रणालियों के विकास में योगदान मिला है। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
भारत एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुपर फोर में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 41 रन से हराया। आज दुबई में रात 8 बजे एक और सुपर फोर मुकाबले में बांग्लादेश का सामना पाकिस्तान से होगा। विजेता टीम फाइनल में भारत के साथ खेलेगी। कोलकाता और आसपास के इलाकों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि की घोषणा की है। विभाग ने छत्तीसगढ़ और विदर्भ में आज अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, लक्षद्वीप, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
धन्यवाद लवलीन। मंत्रिमंडल के कल लिए गए फैसलों को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, मेडिकल में स्नातक और स्नातकोत्तर की लगभग 10,000 सीटें बढ़ेंगी, छात्रों को मिलेंगे ज्यादा अवसर। इंटरनेट मीडिया को मानने होंगे भारत के कानून, कर्नाटक उच्च न्यायालय का ये फैसला दैनिक जागरण में है। पत्र ने न्यायालय की इस टिप्पणी को भी दिया है कि कोई भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म भारतीय बाजार को सिर्फ प्लेग्राउंड नहीं मान सकता। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सोशल मीडिया को भारत में काम करना है तो मानने होंगे नियम। हिंदुस्तान ने MiG-21 विमान की विदाई पर विशेष आलेख देते हुए लिखा है, बेमिसाल 62 साल के गौरवशाली अध्याय के बाद आसमान का रखवाला कल विदाई लेगा। दैनिक भास्कर ने गुजरात के विभिन्न स्थानों पर हो रहे गरबा के अनूठे रंगों को सचित्र देते हुए लिखा है कि नवरात्रि का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। उधर दशहरा की तैयारी पर जनसत्ता कहता है, विशाल पुतले, शानदार मंच और सितारों को बुलाने की होड़। अमर उजाला की खबर है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण ओम स्वस्ति अस्तु से शुरू कर ओम शांति ओम पर खत्म किया।
धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,034 करोड़ रुपए की लागत से 5,023 MBBS सीटें और PG की 5,000 सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया। CBSE ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि घोषित की। परीक्षा अगले साल 17 फरवरी से शुरू होगी। और क्रिकेट में भारत ने एशिया कप के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।